ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, ये चीजें छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, जो यहूद उस वक्त के भी थे, आपको पता वो भी बहुत जादू में तेज थे, लबीद ने किया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू, यहूदी था, इन्होंने चीजें तो नहीं छोड़ी थी वो, तो ये काश ईमान लाते वो वाले लोग भी, और ये जो इस वक्त करंटली मदीना में थे यहूद, ये भी ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो अलबत्ता सवाब अल्लाह के पास जो है वो बहुत बेहतर है, जो अल्लाह की तरफ से अजर मिलना था तो बहुत बड़ी चीज थी। ये इन्हीं चीजों में पड़े रहे, हमारी जितनी भी कोई बड़ी ख्वाहिश हो, कितनी भी बड़ी ख्वाहिश हो जिसपे हम मर रहे हैं, अगर वो नहीं भी पूरी होती इस दुनिया के अंदर, तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, अगर इंसान का ये ईमान है ना कि एक आखरत है, मुझे वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं भी पूरा हुआ मुझे वहां पे जन्नत में मिल जाना है, जो कहूंगी वो मिलेगा, तो क्या उसको करार नहीं आ जाएगा, या वो कहेगा कि नहीं मैं जाऊं और जाके इस वक्त कोई ताबीज कराऊं, कुछ भी कराऊं, बस ये होना चाहिए। अल्लाह अकबर, लौ कानू यालमून, फिर फरमाया इनको काश ये बात पता चल जाए कि ईमान और तकवा कितनी बड़ी चीज है। ये हमारे लिए भी है कि अगर हमें भी पता चल जाए कि ईमान और तकवा, ये काश हम इसकी तरफ जाएं, इसको ज्यादा तवज्जो दें, वो अल्लाह के यहाँ जो सवाब है वो कितना बड़ा मिलेगा हमें, ये तो वहां जाके आंख खुलेगी ना, पता चलेगा कि वो इस नेकी का इतना बड़ा सवाब था, वो मेरी दोस्त ने कर ली, मैं भी तो कर सकती थी, हाय मैं कितनी पागल थी, मैंने क्यों नहीं किया, जब वहां पे रिवॉर्ड्स दिखेंगे, और जब भी वहां पे वाइस वर्सा भी है, जब वहां पे गुनाह का देखेंगे कि वबाल कितना बड़ा, हाय तो फिर मैंने क्यों किया, मैं छोड़ सकती थी, मैंने क्यों नहीं छोड़ा, कितना अफसोस होगा, अब पता चलेगा इसका गुनाह का वबाल क्या है, वो तो दुनिया में थोड़ी पता चल रहा था। तो अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो अल्लाह के पास जो अजर था वो बहुत बड़ा था, बहुत बेहतर था। काश इनको पता हो, हमें सिर्फ जाहिर नजर आता है ना यहाँ पे, हमें तो नजरों से ओझल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रा'इना वक़ूलू इंज़ुरना वस्मऊ, अब ये भी पीछे से कैसे रिलेटेड है, देखिए ना पीछे भी अल्फाज की बात आई ना, अल्फाज के असर की बात है, यहाँ पे भी अल्फाज ही हैं। यहूद क्या करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे होते थे, अल्फाज को ट्विस्ट करते थे, असल में सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम को जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी या रिपीट करने को कहना चाहते थे, तो कहते थे रा'इना, यानी आप हमारी रियायत करें, यानी आप हमारे तरफ तवज्जो करें, हमें पार्डन करें, हमें माफ कर दें कि हम आपको दोबारा माइंड ना करिएगा, जैसे हम इतनी लंबी बात को मैं कह रही हूँ वो एक लफ्ज में, कि यानी आप से गुजारिश है आप माइंड ना करें, लेकिन आप इस बात को रिपीट कर दें, हमें माफ करें इसके ऊपर, जैसे हम एक्सक्यूज मी कह देते हैं कि मुझे सुना नहीं है तो एक्सक्यूज मी प्लीज पार्डन मी, तो वो ये राय ना। अब उन्होंने जब वो आते तो अंदर उनकी खबासत इतनी भरी हुई थी ना, अब जब अंदर किसी के खिलाफ जलन होती है ना तो वो जाहिर में जरूर आ जाती है। इनका हमेशा से आप देखें, पहले भी आपको बताया था हित्ता तो उनके हिंता तो उनके कह दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो अस्सलामु अलैकुम कहते थे, साम अलैकुम का मतलब मौत है तुम पे, तो इनका तरीका ये था अल्फाज को ट्विस्ट करना, इनकी नेचर थी, इनके पीछे से यही चला रहा था, यहां पे भी क्या किया राइना को राइना कह दिया, या इस तरह से ट्विस्ट करते थे राइना मतलब मेरे चरवाहे, यानी एक तरह से तजहीक करने के लिए, फन मजाक करने के लिए, और अगर कोई कहेगा कि आप ये क्या कह रहे हैं, कहेंगे नहीं मैंने कब कहा, मैंने क्या कहा, राइना ही तो कह रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें अपने काम साफ कराने की जरूरत है, हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, उल्टा चोर को दवाल को डांटे तो कोई कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये उनकी शान में ये गुस्ताखी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, अल्लाह ताला ने मोमिनों को ही कह दिया, आप देखें हालांकि सारी बात यहूद की हो रही है, लेकिन यहाँ पे मोमिनों को क्यों कह दिया, तुम ही चेंज कर लो वर्ड, ईमान वालों आइंदा से तुम राइना कहोगे ही नहीं, उनको नहीं कहा तुम छोड़ दो तुम क्यों ऐसे कहते हो, नहीं ईमान वालों तुम ही वो वर्ड चेंज कर दो ताकि इनको मौका ही ना मिले, तुम कहो कालुन दुरना हमारी तरफ नजर कीजिए, सेम ही बात, मतलब तो सेम ही है, तो तुम इसलिए करो कि इनको ना मौका मिले, आप देख लें अल्लाह ताला को गवारा नहीं है कि मेरे नबी की शान के अंदर इतनी बात भी की जाए। और वो लोग जो मुसलमान होके गुस्ताखियां करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, खुद को कहते हैं मुसलमान, उसके बाद इतने एतराजात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आपकी जात पे, आपकी जिंदगी पे, आपकी शादियों के ऊपर, कभी आपकी जो गजवात है उनके ऊपर, वो क्या अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ने इतनी बात भी नहीं गवारा की है कि मेरे नबी के बारे में ऐसे क्यों कहते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं, पता चला होगा या नहीं चला होगा, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। अल्लाह ताला ने वो अल्फाज ही चेंज करा दिए और फरमाया मुसलमानों को, तुम वसमाओ, तुम गौर से सुना करो, ताकि तुम्हें दोबारा पूछने की ना जरूरत पड़े। तो ये एक मजलिस के अदब की भी बात समझ में आई हमें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, कि अल्लाह के नजदीक आपकी कितनी इज्जत बड़ी है कि अल्लाह को गवारा नहीं है ऐसे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी हो ना, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आगे आप जाके इंशाल्लाह ताला कुरान में जिंदगी रही तो पढ़ेंगे कि सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी नहीं बात करो, अब मेरे नबी के बारे में, मेरे रसूल के बारे में ऐसी बात, ऐसे ना बात करा करो, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल जाया हो जाएं, तुम्हारी नेकियां जाया हो जाएं। बहुत एहतियात करनी चाहिए, कोई आम बंदे की आप बात नहीं कर रहे होते। नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिनके तो नाम लेने पे कहा गया कि दरूद भेजा करो, तो उनके लिए बहुत एहतियात से कलिमात इस्तेमाल करें। कोई उनकी शान में गुस्ताखी वाले ने, उन्होंने ऐसे क्यों किया, आप कौन होते इतराज करने वाले कि उन्होंने 9 साल की उम्र में क्यों की हजरत आयशा से निकाह, या ऐसे क्यों किया, अब वो बेचारे कुछ लोग हैं वो मुझे रह इस बात पे, नहीं वो तो उस वक्त इतने साल की थी, नहीं तो वो तो ऐसे थी, वो तो वो था, कि लोग सेटिस्फाई हो जाए, कोई जरूरत नहीं। जो बुखारी में रिवायात आ गई ठीक है, हम इससे अशेम्ड नहीं है। तो यही सिर्फ बात नहीं, और बहुत सारी बातें हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। और बता दिया गया उनको, सुना करो गौर से, इसका मतलब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे उनको बताया गया, और जो इल्म लेने की मजलिस होती है ना, उसका एक, इसकी एक अदब होती है, और वो अदब क्या है, जो सिखाने वाला है एक तो उसकी तमीज होनी चाहिए, उसका अदब होना चाहिए। दूसरा क्या है, आप जो मजलिस के अंदर बैठे हैं तो गौर से सुने, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, काफी होता मेंटली प्रेजेंट रहे। ये नहीं कि दिमाग कहीं सैर करने गया, खुद बैठे में हाजिरी लगवा दी है, मैं प्रेजेंट, काम औरों में लगे हैं, तो ये कौन सा सुनना, फिर बाद में कहना अभी ये समझाएं। वैसे कोई मसला नहीं है, कोई बात ना समझ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो हमारा दिमाग ही कहीं और घूम रहा था, बात ही नहीं समझ रही। तो सहाबा को भी कहा गया आप गौर से सुने, ताकि दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ पे ये नहीं कि क्यों नहीं कहा गया यहूद के लिए दर्दनाक अज़ाब, यहूदी ऐसा करते थे, बाज मुनाफिकीन भी ऐसा करते थे, तो ये नहीं कहा गया यहूदियों और मुनाफिकों के लिए, इसलिए कि अल्लाह के नजदीक काफिर है, चाहे वो यहूदी कर रहे थे चाहे कोई मुनाफिकीन कर रहे थे, अल्लाह के नजदीक वो काफिर। इसका मतलब है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे ना, उसका मकाम अल्लाह के नजदीक ही है कि वो काफिर है। ठीक है, फिर इनकी इनर जो खबासत है वो बताइए कि इनके दिलों में क्या है, असल में प्रॉब्लम दिल का है, ऐसे ही नहीं फिर जुबान से ये अल्फाज निकलते, मसला दिल का होता है। ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم। इनका प्रॉब्लम ये है कि दिल में जो ये अहल किताब के काफिर है ना, अहल किताब नहीं सिर्फ कहा गया, अहल किताब के काफिर, काफिर मतलब वो, यानी जिन्होंने समझते बूझते हुए इनकार किया, पैगाम आ गया उनके पास फिर भी उन्होंने कुफर किया, उनको काफिर कहा गया है, अहल किताब के काफिर, जो जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं फिर भी इनकार कर रहे थे। और वलल मुशरिक, और ना ही मुशरिकों, क्या नहीं है दिली चाहत किनकी, अहले किताब की जिन्होंने कुफर किया, और मुशरिकों की भी चाहत नहीं है, क्या अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरि मिन रब्बिकुम, कि नाजिल की जाए तुम्हारे ऊपर कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, इनसे देखी नहीं जाती। इसको कहते हैं ना हसद, ये हसद की डेफिनेशन है। क्या होती है हसद की डेफिनेशन, कि इसको कोई खैर ना मिले, मुझे मिले या ना मिले, बस इसको क्यों मिल गई, इसके बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों मिल गया, इसका, इसकी बच्ची का अच्छा रिश्ता क्यों हो गया। अब हमारे अगर बच्चे नालायक हैं, इसके भी नालायक ही होने चाहिए, और हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ, इसका क्यों हुआ, इसका भी नहीं होना चाहिए। अरे अब मेरा होता या नहीं होता, मगर इसका क्यों हुआ? ये होता है हसद। जो हसद है ना, चाहे कौमों में आ जाए, कौमों को तबाह कर देता है, जैसे ये यहूद में आ गया था। इनको क्यों मिल रही है? हमारे पास इतने अरसे से, इतने हजारों साल से हमारी जेनरेशंस के अंदर नबुवत आती। वो देखो अपनी, जिस तरह हम भी माशाल्लाह इसमें कम नहीं है, जैसे अपनी अपनी कौमों का गरूर होता है ना, हम बड़ी चीज, हम ये हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर हम फलां, जो भी आपकी जिस चीज के ऊपर भी आपको गरूर होता है, वो वाली अपनी कौम का नाम हर कोई बोले और सोचे कि हम क्या सोचते हैं उसको। सोचते हैं ना हम फलां हैं जी, इस तरह जब बताते हुए भी बहुत सार ऊपर करके बताते हैं, तो वो भी ऐसे ही कहते थे। कोई नई चीज तो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, वही माशाल्लाह बीमारियां हमने कैरी की नहीं है कि उनको था। हम इतनी बड़ी चीज है, हमारे अंदर ना आए कोई रसूल और इनके अंदर आ गया। और मुशरिकीन को क्या मसला था? उनको ये था कि हम इतने बड़े बड़े सरदार, हमें छोड़ के इसके ऊपर क्यों आया? ये क्या, एक यतीम बच्चा? और क्या हम हैं जो इतने इतने बड़े सरदार हैं, हमारी इतनी इतनी जायदादें हैं, हमारे पास माल है, ये सब कुछ है, हमारा एक स्टेटस है। ये हसद जब इंडिविजुअल्स में आ जाए तो उनको भी तबाहो बर्बाद कर देता है। हसद ऐसी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है। इनके अंदर यही आया था और इन्होंने कहा क्यों, कोई खैर क्यों? खैर मसलन कौन सी खैर? सबसे बड़ी खैर जिसका इनको अफसोस था, जिसका इनको रांझ था, वो तो मैंने वही बताया ना, नबुवत क्यों इनमें आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों रिसालत मिल गई, और खैर कि मुसलमानों को फतुहात क्यों मिल रही है, ये क्यों मजबूत होते जा रहे हैं, इनके कदम क्यों जम रहे हैं, मिन खैरिन, कोई किसी किस्म की भी खैर इनको क्यों मिल रही है। और हालांकि आपको पता है, जब कोई इंसान हसद करता है तो वो असल में किस पे इतराज कर रहा है? किसने उसको दिया? सोचे, किसने उसको दिया? अल्लाह ने दिया ना, तो आप किसके ऊपर इतराज करें कि क्यों अल्लाह ने दिया? तो अल्लाह ताला इसी का जवाब दे, वल्लाहु यख्तसु बिरहमति मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत जिसको चाहे अता करे, जिसको चाहे। क्या अल्लाह तुमसे पूछेगा किसके ऊपर क्या देना है, किसको क्या नहीं देना? उन्होंने तो हसद किया, हम अपने आपों को भी जरा देखें ना, हम सब जब हम हसद करते हैं तो हम अपने आप को ये क्यों नहीं रिमाइंड कराते कि अगर मुझे फिर इसका मतलब ऑब्जेक्शन करनी चाहिए ना, तो अल्लाह के ऊपर करूं फिर? नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह क्यों दिया तूने उसको? मैंने मेरे से पूछ के देना था, मैंने आपकी इजाजत चाहिए अल्लाह ताला को किसी को देने की? क्योंकि उसको उसकी अपनी नहीं है कोई काबिलियत, अल्लाह देता है जिसको भी, जिसके ऊपर भी उसने कोई ब्लेसिंग करनी होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। हमारा ईमान है ना, ये भी यदि कल खैर, अल्लाह के पास है सारी खैर, तो अल्लाह ने जिसको चाहिए दे। अब हम, मैं या आप कौन होते हैं इतराज करने वाले? तो जब इंसान हसद में पड़ता है ना, तो इतनी बीमारियां इससे आगे जन्म लेती हैं। इंसान बदगुमान होता है, साजिशें करता है, तोहमतें लगाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है, तभी तो जादू टूनों की तरफ भी जाते हैं। किसी को, किसी की पॉजिटिव चीज फिर नजर नहीं आती, बस नेगेटिव ही नेगेटिव उसके अंदर नजर आता है। और जो कोई इस रास्ते पे चल पड़ता है ना, तो फिर वो बस अल्लाह की मदद से महरूम हो जाता है, बस वो इस पे आगे ही चलता जाता है। देखिए, किसी को भी कोई फजल मिलता है ना अल्लाह की तरफ से, देखिए वो इंसान ये सोच के अपने आप को इत्मीनान दिलाए कि मुझे अल्लाह से मांग रहा है, अगर मुझे भी मिल सकता है, अल्लाह ही से मिलना है मुझे, मैं उसका क्यों देखूं? देखिए सहाबा में और ये यहूद में कितनी कितना फर्क था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके पास आए ना, यहूद ने हासिदाना रवैया इख्तियार किया, वो उनका अंजाम क्या हुआ? और सहाबा ईमान ले आया, वो कहां तक पहुंच गए? इसलिए कि उन्होंने किस चीज में दिलचस्पी ली, उन्होंने कहा कि हम क्या काम करें, हम कितनी मेहनत करें, हम बेस्ट बन जाएं, हम आगे निकलें। वो अगर हसद में पड़ जाते तो ये कर सकते थे वो काम? वो अपने आप के ऊपर तवज्जो देने वाले थे। जो हासिद होता है ना, फिर वो अपने आप पर तो उसकी तो तवज्जो नहीं रहती, फिर वो बस दूसरे को ही देखता रहता कि अब हो क्या रहा है, अब लेटेस्ट क्या हुआ है, अब उसकी टो में लगे रहना, अब आगे क्या हो रहा है, या फिर जलते रहना, भुनते रहना। तो हासिद फिर वो चीज बन जाता है जो गंदी मक्खी होती है, गंदगियों पे ही बैठती है वो। यहां पे खास तौर पे जैसे मैंने बताया किस फजल की बात हो रही है, रिसालत। अरे रिसालत का जो फजल है ना, ये किसी को मांगने से नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला की खास ही किसी के लिए चुनाव होता है, अल्लाह उसको चुन लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिन अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, यानी जिसको मर्जी फजीलत दे, फजल उसके हाथ में, और बाकी जो फजल है वो किसी को भी मिल सकते हैं। कोई कामयाबी है, कोई दुनिया की है, या कोई और चीज है, कोई आपको आपको कोई करने को दिल चाहता है जो कि दूसरे को मिला हुआ है, आपको नहीं मिला हुआ, अल्लाह से मांगे, अल्लाह बड़े फजल वाला है। अच्छा, अब अगली आयत है, ये इंपॉर्टेंट है और समझनी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको, पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दो। जो यहूद थे ना, अब जाहिर है इनको चैन तो कहीं आता नहीं था, तो उनको ये जो पिछली भी बात हुई है, ये भी आज तक हसद ये चल रहे हैं ना, मुशरिकों में भी और यहूद में भी, कफर मिनाल किताब में भी ये हसद है और ये मुशरिकीन में भी। इसीलिए आप देखें आज भी सबसे ज्यादा जिसके पीछे पड़े हुए हैं वो मुसलमान है, औरों के नहीं, वो मुसलमानों के पीछे है। तो ये क्या, ये इनकी बीमारी उस वक्त की नहीं थी, आज तक की है। अच्छा, अब ये क्या करते थे, मुसलमानों के पास आके कहते थे, हाँ ये तुम्हारे, अगर ये तुम्हारी किताब अल्लाह की तरफ से होती तो भला हमारी तौरात में तो ये हुक्म आया, ये बदल क्यों गया, ये यहाँ पे कुछ और क्यों हुक्म आया आ गया। इसका जवाब यहाँ पे दिया गया, क्योंकि तो कुछ चीजें आपको पता है कि शरीयत मौसवी में जायज थी, हमारी शरीयत में मना हो गई। ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, कुछ चीजें हर शरीयत के अंदर बेसिक्स तो देखें सेम है, वो तो नहीं चेंज हुई, अकीदा सेम है, या जो अल्लाह ताला ने हालात बताए पिछली कौमों के उनमें से कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ चीजें बदल दी गई जो इनकी किताब में थी लेकिन हमारे हमारी शरीयत में मनसूख कर दी गई। अब इनको बड़ा इस चीज के ऊपर एतराज होता है, या बताओ ना फिर अल्लाह की तरफ से ही अगर है तो फिर बताओ कि क्यों ऐसा हुआ। या कुरान पाक में एक हुक्म आता था और उसके बाद वो हुक्म खत्म हो जाता था और फिर दूसरा आ जाता था उसकी जगह, तो वो पूछते थे कि अगर अल्लाह की तरफ से पहला भी आया था तो अब क्यों चेंज हुआ है। मसलन है किबले का, पहले बैतुल मकदस मदीने में आके 16 महीने बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़ी गई थी, तो फिर ये अब चेंज क्यों हुआ, ये क्या बात हुई। इस तरह अब मुसलमान भी इसमें परेशान हो सकते थे जो कमजोर ईमान वाले थे। अल्लाह ताला ने ये वो रूल बता दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया मा ननसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाती भी खैर मिनहा औ मिथलिहा, कि मा ननसख, नहीं मनसूख करते, नहीं नसख करते हम आयत में से, और ना ही इसको भुलाते हैं, मगर क्या करते हैं उससे बेहतर ले आते हैं या उस जैसी ले आते हैं। अब पहले तो नस्क को समझ लेते हैं कि नस्क क्या है। इब्ने अब्बास के मुताबिक नस्क का मतलब होता है बदल देना, यानी जैसे कहते ना कि इसकी जगह ऑल्टरनेट को ले आना। दूसरा ये भी कहा गया कि मिटाने का माना है, तीसरा ये भी कहा गया भुला देने का माना है, उठा लेने का माना है, ये सब मुफसरीन की तरफ से इसके माने बताए। अब मैं आपको नस्क बताती हूँ कि नफ्स तीन तरह का हुआ है, ये आप लिख लें बात ना, ताकि एक दफा आपको ये बात सही सही हो जाए। नस्क तीन तरह का हुआ है कुरान पाक में। नंबर वन, तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी रहा, अब सॉरी हुक्म भी मनसूख हो गया, पहला ये लिख लें, पहले ये आपको बताते कि दोनों मनसूख हो गए, तिलावत भी मनसूख हो गई, हुक्म भी मनसूख हो गया। मसलन है कि पहले ये था हुक्म के 10 बार जो औरत दूध पिलाती है किसी बच्चे को तो उससे रजात साबित हो जाती, फिर अल्लाह ताला ने ये तिलावत से भी मनसूख कर दिया और हुक्म भी खत्म हो गया। नंबर टू, हुक्म बाकी है, तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म है लेकिन तिलावत कैंसल हो, जिसमें 5 बार दूध पिलाए कोई औरत तो उससे रजात साबित हो जाती है। तो आप देखें हुक्म मौजूद है लेकिन ये आयतें हमें कहीं नजर नहीं आती, ठीक है। तीसरी क्या चीज है, तिलावत मौजूद है, हुक्म मनसूख हो गया, तिलावत है लेकिन हुक्म मनसूख हो गया। इसकी आयात हैं कुराने पाक में, बाज ने तो बहुत सारी बताई लेकिन इमाम शौकानी ने 5 मकामात बताए हैं जहां पर ये है कि हम उनको पढ़ते तो हैं उन आयतों को लेकिन उनका हुक्म मनसूख हो चुका है। नंबर वन, सूरह बकरा में आप आगे पढ़ेंगे 181 आयत है, कतबा अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत, ये इसके अंदर क्या था कि अल्लाह ताला ने पहले ये फरमाया कि कोई वसीयत कर दे, लेकिन अब उसके बाद जब विरासत के अहकाम आ गए सूरह निसा में, तो फिर वसीयत को अब करने की ज़रूरत नहीं है इन वारसों के लिए। फिर नंबर 2 सूरह निसा आयत नंबर 15 कि जो भी बेहयाई का इर्तकाब करे उसको घर में कैद कर दिया जाए, अब ये मनसूख हो गई है इसलिए कि सूरह नूर में आयत आ चुकी है कोड़े मारने की जो गैर शादीशुदा है। फिर सूरह बकरा आयत 240 में इसमें था कि औरत की इद्दत 1 साल है, उसको 1 साल तक घर से ना निकाला जाए। और इसके बाद इसकी नासिख आयत आ गई अलबकरा 234 जिसमें औरत की 4 महीने 10 दिन इद्दत है और फिर उसको विरासत में से मिल जाएगा तो वो फिर अपना कर सकती है उससे। फिर उसके बाद सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 मनसूख है, उसकी नासिख आयत जिसने उसको रिप्लेस किया है वो 66 आयत सूरह अनफाल की है, जिसमें कहा गया कि एक मुसलमान पहले 10 काफरों का मुकाबला करेगा, फिर मामला हल्का कर दिया गया, फिर एक मुसलमान 2 काफरों के मुकाबले में काफी है ये कह दिया गया। फिर आयत 4 सूरह मोहम्मद की ये मनसूख है जिसमें है कि जो कैदी आए आपके पास तो उनको या फिदिया लेके छोड़ दें या वैसे ही उनको छोड़ दिया जाए, मगर गुलाम लौंडी नहीं बना सकते। तो सूरह अहज़ाब आयत 50 आ गई और उसने इसको मनसूख कर दिया, उसमें गुलाम लौंडी बनाने की इजाजत दे दी गई। तो ये 5 है बस, ठीक है। अब इसके अलावा ये कोई देखिए खुद से नहीं कर सकता, अगर जैसे अस्तगफिरुल्लाह कोई उठ के कहे ये वाली मनसूख हो गई है या ये वाली अब हमें नहीं समझ आ रही तो ये मनसूख है, ऐसे नहीं होता। इसके लिए भी बहुत बड़े जय्यदुलमा ने इसके पीछे सारा किया और बताया कि इसका क्या मतलब निकलता है आज के हालात से, तो मनसूख नहीं है, वो खुद से नहीं ऐसे कर सकते। तो आपको जैसे मैंने बताया इस तरह से कुछ तो तिलावत में भी मनसूख हुई और हुक्म में भी मनसूख हुई, कुछ का हुक्म बाकी रहा तिलावत मनसूख हो गई। और इसमें एक रजम की भी है बात, जो नंबर 2 है इसमें हुक्म बाकी है लेकिन तिलावत नहीं है, और रजम करना आज भी है लेकिन आप इसकी आयत नहीं पढ़ते कुराने पाक में, ठीक है। तो ये कि शादीशुदा जो जानी है उसको पत्थर मार मार के गड़ा खोद दिया जाए जमीन में, उसके अंदर खड़ा किया जाए और पत्थर मार मार के मार दिया जाए, ये है रजम। और ये जो यहूदी आज भी इस चीज को बनाते हैं या गैर मुस्लिम लोग बनाते हैं इस चीज को मसला कि शरिया शरिया तुम्हारा तो शरियत लॉ ना आ जाए, मुसलमान तो ऐसे बेचारे डरते ना शरियत से कि वो तो कांप उठते हैं कि हाय हमारे मुसलमान मुल्कों में भी कहीं शरियत ना नाफिज हो जाए। वो भाई शरीयत तो वही है, वो ही उनकी किताबों में थी, वो ही इसमें थी, सिर्फ जो चीजें मनसूख हो गई अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे बेहतर कोई हुक्म आ गया औ मिसलिहा या उसके बराबर ही कोई आ गया या उनसे बेहतर आ गया। देखिए ना उनकी शरीयत के अंदर था, आप सिर्फ कहीं नहीं नमाज पढ़ते, सिर्फ सिनागॉग्स में जाके पढ़ सकते हैं, हमारे लिए कह दिया गया सारी जमीन तुम्हारे लिए है जहां मर्जी नमाज पढ़ो, सिर्फ कब्रिस्तान में और हमाम में नहीं पढ़ सकते। कई चीजें और हैं उनके ऊपर, कुछ चीजें हराम थी वो हमारे लिए हलाल कर दी गई, माले गनीमत है जैसे कि उनके लिए नहीं वो ले सकते थे हमारे लिए हलाल कर दिया गया, को और कई चीजें हैं। तो उससे बेहतर से मतलब ये नहीं है कि कोई आयतों से बेहतर कोई और आयतें हैं, बल्कि आप ये देखें उनकी शरीयत में कुछ चीजें थी जो इस शरीयत में जिसमें अमल में सहूलत दे दी गई, आसानी दे दी गई, जिनमें सवाब ज्यादा है वो वाला काम दे दिया गया, ठीक है। तो उस शरीयत से इसमें आने में भी कुछ नस हुए और कुराने पाक में इटसेल्फ भी कुछ नस हुए, और मैंने उन जो कुराने पाक में नस हुए हैं उनकी आपको 3 किस्में बता दी, ठीक है ना। इसी तरह एक आयत थी कुराने पाक में जिसमें था कि इब्ने आदम को अगर 2 जंगल सोने के मिल जाएं तब भी उसको तीसरे की ख्वाहिश रहेगी, तो ये आयत उठा ली गई, इसको नुनसीहा है ना भुला दिया गया। इसी तरह एक तबरानी में एक रिवायत आती है कि 2 आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सूरत याद की थी, उसे वो पढ़ते रहते थे, एक दफा रात की नमाज में उसको पढ़ना चाहा लेकिन याद नहीं आ रहा था कि क्या है, तो घबरा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो आपने फरमाया ये मनसूख हो गई और भुला दी गई है, दिलों में से भी निकाल दी गई है, तुम गम ना करो बेफिक्र हो जाओ। तो कोई दिलों से भी उठा दी जाती थी, वो थी जो कि भुला दी गई, तो जिस हुक्म को भी अल्लाह ताला उठा लेना चाहता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला देता था, तो वो आयत उठ जाती थी, ठीक है। और जो नस्ख था वो मैंने आपको बता दिया कि पिछली शरीयतों में देखिए इस तरह तो हर शरीयत में भी नस्ख होता रहा, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में बेटे और बेटी एक ही आपस में जो बहन भाई समझ सकते हैं कि उनका आपस में निकाह जायज था, फिर उसके बाद तो हराम कर दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कश्ती से जब उतरे थे तो तमाम हैवान का खाना हलाल था, बाद में ये कई चीजें हराम कर दी गई। दो बहनों का निकाह बनी इसराइल में उनकी औलाद पे हलाल था कि दो बहनों का निकाह एक आदमी से कर दिया जाए, लेकिन फिर तौरात में भी और उसके बाद भी हराम हो गया। तो इस तरह कई चीजें हैं ना कि जिनको पहले थे उसके बाद फिर उठा ली गई, और इसके अंदर कोई बेहतरी ही होती थी, इसके अंदर कोई अल्लाह ताला उसे बेहतर चीज फैसला क्यों, क्या पहले नहीं बेहतर लाया जा सकता था? इसलिए कि हर हालात के मुताबिक लोग कितने उसके लिए रेडी हैं उसके मुताबिक हुक्म लाया जाता। मसलन शराब का एकदम नहीं हुक्म लाया गया कि हराम है, क्योंकि क्यों कहा जाए लो शराब का तो पहले कहा गया था तो इसके अंदर नुकसान ज्यादा है लेकिन इसमें नफा भी है, कहा गया ना, लेकिन वो शुरू का था, उस वक्त लोगों को प्रिपेयर करना था और उसके बाद हुरमत आई। तो इस तरह से कुछ चीजों को ऐसे नासिख और कोई चीजें कोई आयात नासिख थी और कुछ मंसूख कर दी गई, नासिख ने आके पिछली को मंसूख कर दिया जो मैंने आपको 5 मकामात बताए हैं, और कुछ भुला दी गई। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, एतराज किस बात पे करते होगा, तो मैं नहीं पता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो कुदरत रखता है इस बात के ऊपर कि जिस चीज को चाहे मंसूख कर दे। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्ध, बादशाहत किसकी है, बादशाह कौन है, यहाँ पे हुक्म किसका चलेगा, अल्लाह का। हाँ आप देखें ये बताया जा रहा है, यानी कि तुम कौन होते हो एतराज करने वाले, तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले, किसकी बादशाहत है, तुम किस पे एतराज कर रहे हो। वो जिस हुक्म को चाहे लाए, जिसको चाहे उठा ले, फआलुन लिमा युरीद, वो जो चाहे करे। आप पूछते हैं किसी मुल्क में आते हुए आपने ये कानून क्यों बनाया, भाई जब आप उसमें एंटर हो गए तो आप उस कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब किसी मुल्क का कुछ कानून है, किसी मुल्क का कुछ कानून है, आप यहाँ पे रहते हैं तो कुछ कानून है, आप किसी और मुल्क में जाते हैं उनके कुछ डिफरेंट तरह के कानून है, आप नहीं पूछते जाके, आप पहले मुझे बताएं इसके बारे में आपने ऐसा क्यों बनाया। और अल्लाह से पूछ रहे जो के बादशाह है आसमानों और जमीन का, वो जो मर्जी करे, जिस हुक्म को मर्जी लाए, जिसको मर्जी ले जाए। मोमिन की क्या निशानी होती है कि वो समय आना व अताना करता है, ठीक है, वो आगे से क्वेश्चनिंग नहीं करता ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, उसका इख्तियार है, वो उसको अपने हुक्म बदलने का भी इख्तियार है, जब मर्जी कोई हुक्म लाए, जब मर्जी नया बना दे, जब मर्जी पीछे वाले को एब्रोगेट कर दे, मनसूख कर दे। याद रखें मोमिन की जो है ना तीन निशानियां होती हैं, तीन निशानियां होती हैं मोमिन की, अल्लाह और उसका रसूल उसको सबसे ज्यादा महबूब हो, पहली निशानी है, सबसे ज्यादा महबूब हो, सिर्फ नहीं सबसे ज्यादा महबूब हो, ठीक है। नंबर टू दोस्ती अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी उसको अल्लाह के लिए ही हो किसी से। नंबर थ्री कुफर की तरफ लौटना उसको इतना ही मुश्किल हो जैसे आग में जिंदा जलाया जाना। तो मतलब यह है कि इतना महबूब हो अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक। और जब इतराजात आते हैं ना तो उससे पता चलता है कि नहीं बहुत कुछ और है जो महबूब है, इसीलिए इतराज आ रहे हैं अल्लाह के हुक्मों के ऊपर। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, और अल्लाह तो वो है जिसकी बादशाही आसमान और जमीन की है, वो नहीं अगर तुम्हारा वली और नसीर तो उसके सिवा कोई तुम्हारा प्रोटेक्टर वली दोस्त सब इसमें आ गया और ना कोई मददगार है। यानी दोस्ती करनी तो अल्लाह से करो, मददगार बनाना है तो उसको बनाओ। अगर तुमने अल्लाह पर इतराज किए तो फिर ये याद रखो कि फिर कोई और मददगार और दोस्त नहीं है तुम्हारा, हिमायती नहीं होगा तुम्हारा, और जो तुम्हारा दोस्त और मददगार हो वो क्या तुम्हारे लिए ऐसे अहकामात देगा जो कि तुम्हें मुश्किल में डालें, नहीं, तो सब तुम्हारी भलाई के लिए है। अम तुरीदुना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम भी चाहते हो कि उसी तरह सवाल करो अपने रसूल से जैसे मूसा अलैहि सलाम सवाल किए गए। बाज दफा देखे ना आप जब ये यहूदी ऐसे मुसलमानों के भी कानों में फूंक देते थे, देखो फिर ऐसे क्यों हो रहा है, देखो फिर ये क्यों कर रहे हैं, तो ये क्या बात हुई फिर, तो अब वो जो भोले मुसलमान होते थे जिनको नहीं इतनी समझ होती थी वो आके फिर आपसे बड़ा से उनसे पूछते थे कि आप बताएं कि वाकई ऐसा क्यों है, जैसे आज भी नहीं बच्चे ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे सुनते हैं, आप अपना तो कुछ पता नहीं होता, फिर आके पूछते हैं, हाँ फिर ऐसे क्यों किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर हमारे मजहब में ये क्यों है, फिर ये तो सही नहीं है ना। अब उनकी बातों को लेकर उनसे मुतासिर होके फिर वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं, फिर वो आके रसूल से भी पूछते थे, अब आप बताएं ना फिर ये क्या है, फिर ऐसा क्यों है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम भी ऐसे ही चाहते हो कि तुम अपने रसूल से उसी तरह सवाल करो जैसे मूसा अलैहि सलाम से किए गए थे इससे पहले? क्या सवाल किए गए थे मूसा अलैहि सलाम से? वो पता है मूसा अलैहि सलाम, ये तो अभी आपने पढ़ा है गाय का किस्सा, कितने सवाल किए गए। फिर आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने तो ये तो गल के पीछे गुजरा भी है उसका, और आगे भी आके बताया जाएगा इसी बारे में, इन्होंने तो ये तो तक कह दिया था, हमें अल्लाह दिखाएं, सामने दिखाएं हम। कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, किस किस किस्म के सवाल करते थे, और ऐसे ऐसे उनको अजियतें देते थे। एक होता है सवाल करना सीखने के लिए, पहले भी ये बात हुई थी, और एक सवाल होता है इतराज करने के लिए, ऐसा क्यों है, लो ये फिर क्या बात हुई, ये होता है इतराज वाला सवाल। एक है देखिए हमें नमाज सिखा दे, मैं नमाज नहीं आती, ये भी एक सवाल है। अब वो पता है सहाबा कराम ने, अल्लाह अकबर, जब उनको ये पता चला ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था ना जब कसरत सवाल से, कि बहुत ज्यादा सवाल ना किया करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बता भी दिया था कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसके सवालों की वजह से कोई चीज हराम नहीं थी फिर उसके सवालों की से हराम हो गई, वो सबसे बड़ा मुजरिम है, तो इसलिए सवाल ना किया करो। और हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजूल बातें करना, माल को जाया करना और बहुत सवाल करना, ये मना है, मना फरमाया करते थे इससे। ये मुस्लिम बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। तो फरमाया था कि जब तक कुछ मैं तुम्हें ना कहूं तुम भी ना पूछो, तुमसे पहले लोगों की बुरी बात यही थी, और इसी वजह से वो हलाक हुए कि वो बहुत सवाल करते थे और अपने नबियों के सामने इख्तलाफ करते थे। तो जब मैं तुम्हें काम का हुक्म दूं तो पूरा अपनी ताकत के मुताबिक कर लो, अगर मना कर दूं तो रुक जाया करो, तो मत सवाल किया करो। आगे भी आता है या यो लदीना मनु ला तसालु अन अशिया, मत सवाल किया करो ऐसे जो तुम्हें अगर जाहिर कर दी जाए चीजें तो तुम्हें बुरी लगेगा फिर। तो इस तरह के एतराजात वाले सवालात से जब मना कर दिया ना, तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जब हमें आपसे सवाल करने से रोक दिया गया तो हम इतना इस चीज से मतलब अब डरते थे सवाल करने से कि हम चाहते थे कोई कोई बद्दू आ जाए वो आगे कोई पूछ ले तो हम भी सुन ले। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मैं कोई सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहता था तो साल साल भर गुजर जाता था, मगर मैं इस वजह से हैबत के मारे पूछने की जुर्रत नहीं करता था, हम पूछेंगे तो ये कहीं बुरी बात ना हो जाए, इतना ज्यादा वो डरते थे। इसलिए इब्ने अब्बास फरमाते हैं ना कि असहाबे रसूल से बेहतर तो कोई जमात भी नहीं है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 12 सवाल पूछे और सब सवालों के माँ जवाब के कुरान पाक में आ गए हैं। ये जो जो यस अलूना का आप जितना पढ़ते हैं ना, यस अलूना का आगे पढ़ेंगे आप, ये वही सवाल हैं जो सहाबा ने किए हैं, तो 12 ही सवाल पूछे थे बस, बाकी कोई किसी ने पूछा कोई किसी ने आगे कहा उनके जवाब होते रहे। तो तुम ना सताओ अपने नबी को इस तरह से, जैसे कि तुम भी ऐसे ही चाहते हो कि ऐसे ही करो जैसे कि मूसा अलैहि सलाम के साथ इन्होंने किया था। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फकद दल्ला सवा सबीर, तो जो अपने ईमान के बदले कुफर को ले लेगा तो उसने तो सीधे रास्ते से गुमराही इख्तियार कर दी, भटक गया। वो क्या है ईमान के बदले कुफर ले लेना, क्या चीज है? यहाँ पे क्या बताया गया कि सरकशी के साथ नबियों से सवाल करना कितनी बुरी बात है, कि ये कुफर को ईमान के बदले लेना। आज देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है मौजूद, वो डायरेक्ट तो नहीं हमें बता रहे, लेकिन उनकी अहादीस तो है ना, उनकी अहादीस पे एतराज होना, उनकी बातों पे ये एतराज करना, ऐसे क्यों, ये क्यों किया, ये क्यों कहा। मैं आपको पहले भी कई एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ, ये क्या चीज है, देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। ये सवाल नॉर्मल सवाल सवालों की बात नहीं हो रही जिनमें वो कुछ सीखना चाह रहे, उसमें तो कहा गया बंजुर ना कह लिया करो तुम, गौर से सुना करो, वो वाले सवाल वो अलग बात है, वो जो सहाबा एक करते थे कि कुछ सीखने के लिए, ये कौन से सवाल है, एतराज वाले, ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चनिंग, जैसे किसी को क्वेश्चनिंग करना होता है, इंटेरोगेशन, ये क्यों, वो क्यों, ये क्या बात हुई, ये वाली बात, ठीक है, ये क्या है, ये ईमान के बदले कुफर लेना, इतनी बड़ी बात है। क्यों क्यों ऐसे क्यों है? इसलिए क्योंकि नबी जो भी बात कर रहे थे वो अपनी तौर पे तो नहीं कर रहे होते, वो खुद तो नहीं कह रहे होते ये करो ये नहीं करो ये ऐसे करो वैसे करो, वो उन्होंने तो नहीं कुछ खुद कहा होता, वो सब किसकी बात कर रहे होते? अल्लाह की तरफ से बात आई होती। जो इंसान एतराज करता है वो किसके ऊपर कर रहा है? अल्लाह के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी कहा था शायद अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन शायद कोई हुक्म कुरान में आए जो कि आपको पसंद ना आए, जो आपको नहीं अच्छा लगता, फिर उसके बाद आपका उस पर क्या रिएक्शन होता है, आप क्या कहते हैं उसके ऊपर? ये तो इन्हीं इन लोगों की हरकतें ही थी, यहूद की इस तरह की। मोमिन को लेकिन ये जेब नहीं देता किसी बात पे एतराज करें। अब ईमान ले आए तो बस ले आए ईमान, अब एतराज की गुंजाइश नहीं है। वो तो अब सीधे रास्ते से ही भटक गया जो ऐसा करता। क्या तो ये छोटी बात नहीं है कोई। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान अता फरमाए, और ना समझी में हम कभी भी कोई ऐसी बात ना कह दें जो कोई गुस्ताखी की हो। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये जादू टूनों और इन चीज़ों से जो कुफर की चीज़ें, अल्लाह इनसे हमें महफूज रखे हमेशा, वो सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे। हाथ उठें तो सिर्फ अल्लाह के आगे हमेशा उठें। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनो।
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل